हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कल रात की हकीकत इनायत के दिमाग में एक साथ चौंक जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे याद आ जाता है कि अब वो जंजीरों में बंद उसे जानवरों की तरह बांध दिया गया था और उस पिंजरी में अब वो सारी जिंदगी के लिए कैद थी। वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इसलिए चुपचाप से बिस्तर पर आ गई और उसके एक किनारे पर बैठ जाती है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर अपने पैरों में बंधी हुई जंजीर को देखा और उसकी आंखों से आंसू उसके पूरे चेहरे पर फैल गए। इनायत बहुत ज्यादा मजबूर हो गई थी, पर ये कोई पहली बार नहीं था जब वो इतनी ज्यादा मजबूर हो गई थी कि किसी के सामने कुछ कह नहीं पाती थी। सालों तक जब याकूब उसके साथ गलत व्यवहार करता आया, तभी वो इतनी ही मजबूर थी कि उसके बारे में किसी को नहीं बता पा रही थी। उसने कई बार कोशिश की अपने माता पिता को बताने की, जिब्रान को बताने की, लेकिन एक डर उसके अंदर था कि अगर उसने सबसे ये कहा तो लोग उसी को गलत समझेंगे और उसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि उसी ने कुछ ऐसा किया होगा कि याकूब उसके साथ गलत कर रहा है। जिब्रान इकलौता ऐसा शख्स है जिस पर इनायत भरोसा कर रही थी, क्योंकि वो इकलौता ऐसा शख्स है जो इनायत के सबसे ज़्यादा करीब था। इसलिए इनायत को उससे प्यार हो गया, वो उस पर भरोसा करने लगी, उसके साथ अपने दिल का हाल बयां करने लगी। लेकिन फिर भी उसने याकूब के बारे में जिब्रान से कुछ भी नहीं कहा और अब वो रियाज के साथ बंध चुकी है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रियाज की आज्ञा को इनकार कर सके। उस रात पकड़े जाने के बाद रियाज ने जिब्रान को जान से तो नहीं मारा, लेकिन इनायत को पता था कि जिब्रान अभी भी उसकी कैद में है। इनायत सिर्फ जिंदा थी, पर उसमें जिंदगी बाकी नहीं थी। वो बस अपनी सांसें गिनते तक की राह देख रही थी। उसे पता था कि वो अब कभी भी जिब्रान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती है, तो फिर इस जिंदगी का क्या फायदा है। गुड मॉर्निंग मैम, इनायत दरवाजे से आई इस आवाज से अपने ध्यान से बाहर आती है। उसने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो दरवाजे पर एक नौकरानी खड़ी थी जिसके हाथों में कपड़े का एक सेट था और दूसरे हाथों में चाबी। उसके हाथों में चाबी देखकर इनायत का चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है। वो धीरे से अपने बालों को अपने चेहरे पर कर लेती है जिससे नौकरानी उसके चेहरे पर आ रहे इस भावना को पहचान ना सके। उसके चेहरे पर आंसू थे, चोटों के निशान थे और हताशा थी। नौकरानी अंदर आती है और कपड़े का सेट बेड के किनारे पर रखते हुए कहती है, मैम आपके कपड़े, आप फ्रेश होकर तैयार हो जाइए, मालिक ने आपको 15 मिनट में नाश्ते की टेबल पर आने के लिए कहा है। ये कहने के साथ ही वो झुककर पैरों के पास बैठती है और इनायत के पैरों से उस जंजीर को खोल देती है। उसके बाद वो नौकरानी सीधी खड़ी होती है और कमरे से चली जाती है। वो बिल्कुल किसी रोबोट की तरह काम कर रही थी, यहाँ तक कि यहाँ पर काम करने वाला हर शख्स कोई रोबोट ही था। उनके लिए सिर्फ रियाज की आज्ञा ही महत्वपूर्ण थी, बाकी कोई नहीं। जैसे ही इनायत के पैर जंजीर से आज़ाद होते हैं, वो राहत की सांस लेती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों से कितना बड़ा बोझ हल्का हो गया है। उसने अपने पैरों को अपने दूसरे पैरों पर रगड़ा और धीरे धीरे हाथों से अपने पैरों को सहलाने लगी। उसके पैरों में जंजीर बंधने की वजह से वहाँ पर लाल निशान पड़ गए थे। वो निशानों को छूती तो उन निशानों में जलन होने लगती। इनायत के होठों से हल्की सीसकी निकल गई, पर तभी उसे उस नौकरानी के कहे शब्द याद आते हैं। रियाज ने उसे 15 मिनट में डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहा है। इनायत जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और वॉशरूम चली जाती है। वो जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आती है और कपड़े पहन लेती है। उसने ड्रेसिंग टेबल से कंसीलर उठाया और उसे अपने होठों के पास लगाने लगी, क्योंकि वहाँ पर अभी भी जख्मों के निशान थे। चेहरे पर जहाँ पर भी उसे जख्मों के निशान और दाग नजर आ रहे थे, वहाँ पर उसने कंसीलर लगाया। हल्के मेकअप से ही उसका चेहरा खिल उठा और वो खूबसूरत दिखने लगी। पर क्या फ़ायदा इस खूबसूरती का? शायद उसे ऐसी खूबसूरती का श्राप मिला था। तैयार होकर इनायत डाइनिंग एरिया में पहुंचती है। वो देखती है सारे नौकर एक तरफ खड़े हैं और उनका चेहरा झुका हुआ है। रियाज पहले से ही अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में फ़ोन था जो टेबल पर रखा हुआ था और वो उस फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। इनायत धीरे से टेबल के पास जाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे रियाज की परमिशन का इंतज़ार था। इनायत की मौजूदगी का एहसास होते ही रियाज अपना चेहरा उठाकर उसे देखता है। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था और आंखों में एक सख्ती थी। उसने सख्ती के साथ कहा, बैठो। इनायत जल्दी से दूसरी तरफ टेबल के पास अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। उनके बीच बहुत बड़े टेबल का फासला था। इनायत एक तरफ बैठी हुई थी तो रियाज दूसरी तरफ। बीच में खाने की तरह तरह की डिशेस रखी हुई थी, लेकिन इनायत खाने के लिए वही दिया गया था जो कि उसने कल खाया था, और वही जो उसने रात में खाया था, और वही उसे आगे भी खाना था, यानी कि सूखी रोटी और सब्जी। ऐसा नहीं था कि इनायत को इस खाने से कोई दिक्कत थी, लेकिन रोज़ रोज़ एक तरीके का खाना खाकर वो थोड़ा सा उब गई थी। उसके सामने तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे, पर उसे कुछ भी खाने की इजाज़त नहीं थी। मुश्किल से सूखी रोटी को तोड़कर सब्जी में लगाकर उसने मुंह में रखा ही था कि खाना उसके गले में फंस गया। उसने देखा कि उसके सामने ग्लास में पानी नहीं रखा है। वो उठकर खड़ी होती है और एक कुर्सी छोड़कर पानी के जग को उठाती है, पर जैसे ही वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठने वाली थी, उसकी नज़र रियाज की प्लेट पर पड़ जाती है। वो हैरानी से अपना चेहरा हल्का सा पीछे करके तिरछी नज़रों से रियाज की प्लेट पर देखती है, क्योंकि रियाज इस वक्त अपनी मेल में बिजी था, तो उसने इनायत की किसी भी हरकत को नोटिस नहीं किया। पर इनायत हैरानी से रियाज की आधी प्लेट को देख रही थी, जिसमें उसे आधी रोटी का टुकड़ा नजर आया था। वो पानी का जग लेकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है और ग्लास में पानी डालते हुए सोचने लगती है कि क्या उसने सही देखा। रियाज के पास खाने के बहुत सारे ऑप्शन थे, तो फिर वो सूखी रोटी क्यों खा रहा था? इनायत ने अपने सर को झटका। उसने सोचा कि उसने कुछ गलत देखा है। जरूर रियाज के प्लेट में कुछ और होगा और दूर से उसे नजर नहीं आया होगा।